Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی تلاوت اس آیہ کریمہ کا دوسرا حصہ ہے کہ جس پر پچھلے جمعۃ المبارک میں گزارشات پیش کی تھی. اس حصے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے, اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو اور آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں کہتے تھے اور تم اس کی نشانیوں سے تکبر کرتے تھے. قرآن کریم کوئی حصہ کہیں سے بھی اٹھا لیں تو بہت جامع ارشاد ہے, اس لیے کہ اللہ کریم کا کلام ہے. متکلم کا کلام میں اثر آتا ہے, اور جب کلام اللہ کا ہے, ذات اللہ کی ہے, تو کلام بھی اتنا مستحکم اور کہیں کہیں باریک سی بھی کوئی کمی بیشی نہیں. اس آیہ کریمہ کو پچھلے حصے کو ملائیں تو بھی بات بہت واضح ہے. اس آیہ کریمہ کا یہ حصہ جسے تلاوت کرنا نصیب ہوا ہے, اس ہی سے بات کریں تو بھی بہت جامع بیان ہے. اس تفسیر سے پہلے میں اپنے متکفین بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کا آنا اور یہ اعتکاف میں بیٹھنا قبول فرمائے. ایک بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان وہ ہے جو مانتا ہے, تہ دل سے مانتا ہے. کس کی؟ اللہ رب العالمین کی. اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا, اس کی حدود و قیود کیا ہیں, ایک ایک شے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. جب بات ماننے کی آتی ہے, تابع داری کی بات آتی ہے, اطاعت کی بات آتی ہے, تو یہاں غیر مشروط کوئی شرط نہیں ہے. اسی لیے حالات کی تبدیلی کے ساتھ انسان اپنے آپ کو حد شرعی کے تحت تبدیل کرتا آتا ہے. رمضان المبارک میں ملک بھر, تو کیا دنیا بھر کی مساجد میں ایسے ممالک جو غیر مسلم ہیں, وہاں جہاں مساجد کا قیام نصیب ہوا, وہاں بھی متکفین مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے. آج ایک وبائی مرض ہے, ایسی مرض ہے کہ نہ صرف یہاں بلکہ یہاں تو شاید یہ آخر میں پہنچی, پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے رکھا ہے. یہ بحث اور طرف نکل جائے گی اگر ہم اسی موضوع یا اس وبائی موضوع پر ہی بات کریں, लेकिन जो नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि जब इस वबाई मर्ज और इसके एहतियात पर बात आती है तो बेशुमार पहलू हमें सुनने को मिलते हैं, बेशुमार हिस्से जेरे बहस आते हैं। उन्हीं में एक हिस्सा ये भी है कि मसाजिद में जाना चाहिए या नहीं, ये मेल मुलाकात से फैलती है बीमारी या नहीं। मुझे खुद दो दिन पहले एक दोस्त मिला तो वो पूरी शौक से मिला, हाथ भी उसने मिलाए, मैंने भी उसको फिर हाथ मिलाए। साथ उसने मुझे कहा हाथ मिलाने से ये नहीं फैलती भाई जी। अब मैं उसे क्या कहूँ, लेकिन जो नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ बेशुमार साथी एतकाफ करते थे, उसे महदूद किया गया, फिर आप तमाम को आने से लेकर मुतकिफ होने तक एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ा। फिर इस शबो रोज़ में जहाँ इबादत का के लिए मेहनत और मुजाहदा दरकार है, उसके साथ इन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना भी उसी तरह लाजिम रखा गया है। तो जो नुक्ता या जो बात है वो ये है कि बंदे मोमिन किस हालत में है, किस जगह पर है, किस हैसियत में है। हर जगह, हर हैसियत और हर पहलू में एक बात, इताअत, अल्लाह जल्ला शानहू का हुक्म मानना, उसकी पसंद को, उसके हुक्म को मुकद्दम रखना। जिंदगी तंग नहीं होगी, जिंदगी सहल होगी और सहल होती चली जाएगी। तो इसीलिए जब हम इताअत और इताअत की तशरीह ज़ात पर ले आते हैं तो मसाइल पैदा होते हैं। इताअत की शरा यानी हदूद व कयूद, वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकरर फरमाए, जब हम वहाँ से सबक लेंगे तो फिर हमारे लिए रहनुमाई भी होगी और ऐसी रहनुमाई होगी जो सहल भी होगी। क्योंकि दीन इस्लाम दीन फितरत है और तमाम फितरी तकाज़ों को पूरा फरमाता है। तो मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह करीम ये हिस्से आपकी ज़िंदगी के, ये इबादत के, ये इतकाफ के कबूल फरमाए, इसकी मुबारक सातें नसीब फरमाए, इसकी मुबारक रातें नसीब फरमाए। जब आप इस सारी दुनिया के झमेलों से निकल आए हैं तो फिर वापस ना झांकते रहिएगा, क्या हुआ, फलां काम क्या था, मैं क्या क्या आया था। अपने आप को ऐसा अलग महसूस करें जैसे हम अपने प्यारों को अपने हाथों गौर के हवाले कराते। कभी पलट कर उन्होंने पूछा कौन सा सामान मैंने कहाँ रखा है, किसको मैंने क्या पैगाम देना है। बल्कि वो चीज़ें जो संभाल कर रखी होती हैं कि मेरी शय को कोई हिलाए नहीं, वो पड़ी रह जाती हैं। इसलिए इंतहाई मसला को हद से तजावज़ होती है वो और बात है, उसके लिए शरीयत इजाज़त देती है, हुक्म है। कोई ऐसे मामलात पेश आ जाते हैं, अल्लाह ना करे इतकाफ जारी नहीं रखा जा सकता, तो दोबारा फिर ज़रूरी और लाजिम हो जाता है। तो वो सारे हिस्से हमारे साथ मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ गैर ज़रूरी जो मिजाज हमारा बन चुका होता है। हम समझते हैं कि हमारे चलाने से ये शबो रोज़ चल रहे हैं, मेरे करने से उमूर की सर अंजामदही हो रही है। तो जब आप तशरीफ़ लाए हैं तो फिर इस तरह कट कर तशरीफ़ लाएं अपने कुलूब को भी इसी एतकाफ में मरकूज रखें। फिर इस शबो रोज को एक पूरा आपको निज़ाम बना कर दिया गया है, तरबियत का निज़ाम बना कर दिया गया है, उसमें शौक और मोहब्बत और जज्बा किसी भी सहले अमल में अगर दिल की जुस्तजू में ताजगी न हो, शौक न हो, तो वो जुस्तजू इस लायक नहीं रहती कि उस पर नताइज आला मुरतब। ये मामला सारा है ही दिलों का, क्योंकि नीयत बुनियाद है। अल्लाह करीम कमी बेशी हमारी माफ फरमाए, हमें तौफीक अता फरमाए कि ये अयाम खैर वाफियत से गुजरें, तमाम अहबाब के अहल खाना में अल्लाह करीम खैर फरमाए। तो जो आया करीमा मैंने तलावत की, इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वलो तरा इज ज़ालिमूना, अगर आप उस वक़्त इन ज़ालम लोगों को देखें। ये बात हो रही थी आया करीमा का पिछला हिस्सा जो है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठा बोहतान लगाया या कहा मुझ पर वही आती है। मुदियाने नबूवत, तजावज, अपनी बात का मनमाना, बेशुमार हिस्से इस हुक्म के तहत आ जाते हैं। और उसके पास किसी बात की भी वही नहीं आती। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा, और जो कहे कि जिस तरह की किताब अल्लाह ने नाजिल किया उस तरह की मैं भी बना लेता हूं, उससे आगे फिर इरशाद फरमाया जा रहा। जब इस झूठ की बात आती है तो हम सिर्फ एक बात सोचते हैं कि किसी ने नबूवत का झूठा दावा किया है तो उसे मुखातब किया जा रहा है। कोई हुक्म शरी उसके मुकाबल किसी दर्जे की भी ख्वाहिश या किसी दर्जे की भी कोई बात, कोई कलाम, कोई ख्वाहिश जब आती है तो वो तजावज है, वो ज़ात की तरफ से आता है। आप गौर फरमाएं, याद फरमाएं, हजरत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बयानात में जब कशफ पर बात फरमाते थे तो एक बात बड़ी वाज़ह बयान फरमाते कि ये जो साहिब कशफ मखलूक को बता रहा होता है, लोगों को बता रहा होता है कि मुझे तुम्हारे मामले में ये समझ आई, तो वो फरमाते थे कि ये कलाम ज़ाती काफ़ी नहीं है। इरशादात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी नहीं है कि इस सारे के मुकाबले में तुझे ज़्यादा समझ आ रही है। और अगर तू ये समझता है कि मखलूक को तुझे हुक्म देकर मखलूक के लिए हुक्म पहुंचाया जा रहा है तो तू फिर किस बात का दावा कर रहा। इसलिए किसी तजावज को भी जब आप माप तोल पर लाएंगे, उसको परखेंगे, तो वह हदूद से बहुत बाहर आ जाती है बात, और बाहर इतनी उसमें तलखी और इतनी उसमें खराबी पैदा इसलिए हो जाती है कि वो सारा तजावज जितना भी है अल्लाह करीम के हुक्म से है। जब अल्लाह करीम के हुक्म से तजावज की बात आएगी तो तजावज तो बात में बात बहस आएगी, जिस जात से तजावज किया जा रहा है बहस तो वहां पहले चली जाएगी। तो इसलिए इस्लामी अहकामात के मुकाबल कई दफा हम बजिद होते हैं कि ऐसा कैसे है। आप अपनी महफिल में देखिएगा, गुफ्तगू और बहस मुबासे में देखिएगा, और हमारा एक अलमिया है कि हम दीन जानते नहीं लेकिन बहस जरूर करेंगे। इसी तरह हम तबीब नहीं, हर बीमारी और उसके इलाज पर बहस जरूर करेंगे। हालात से वाकिफ नहीं लेकिन पूरा निज़ाम सल्तनत रोज़ हमारी महफिल में डिस्कस होगा और वहाँ हम जो है अपने अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। दुनिया की मामलात की बहस और है, यहाँ की कमी बेशी और है, लेकिन जब बात दीन और दीन इस्लाम की आएगी तो बात बड़ी नाजुक हो जाएगी। इसलिए कि जब बात पर बहस आएगी और हम अपनी राय देंगे, हमारी राय इरशादात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत फिर बात और, उस तहत के लिए जानना जरूरी है। लेकिन अगर अपने ख्याल और अपने गुमान से हमारी बहस होगी तो फिर नहीं मालूम किस वक्त तजावुज़ हम पर हम चले जाए। تو یہ انتہائی نازک معاملہ ہے۔ تو اللہ کریم جو تجاوز پر ہے، جس نے زیادتی اور ظلم کیا ہے، فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے مخاطب، تو اگر اس وقت ان ظالموں کو دیکھ جب سکرات الموت ہوگی۔ کئی پہلو ہیں یہاں پر کہ سکرات الموت اور ان ظالموں کا وہ وقت، اس ظلم کا بدلہ ملک الموت کی گرفت آنے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ پھر دوسری بات کہ قرآن کریم حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمائے کہ قرآن کریم کوئی بات ایسی ارشاد نہیں فرماتا جو گمان پر ہو سکتا ہے، یا ہر بات واضح ہے اور ہر بات مستحکم ہے، اصول بیان فرماتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب یہاں اس جگہ پر یہ فرمایا گیا ہے کہ اے مخاطب، اگر آپ اس وقت دیکھیں، یعنی سکرات الموت اور جو حالات موت کے ہیں یہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب ظاہری آنکھ تو فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتی، ظاہری سماعت فرشتے اور صاحب موت، جسے موت واقع جس پر ہو رہی ہے، اس کی ہم کلامی تو سن نہیں سکتے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، تو سمجھے گا کیا؟ یہ بنیادی ذرائع ہیں، دیکھنا اور سننا، جاننے کے ظاہری اسباب میں بنیادی ذرائع ہیں۔ لیکن جب قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے تو یہ بات حق ہے، پھر یہاں گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، کون ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی نظر اسے دکھا دے، اس کی سماعت اسے سنا دے؟ تو یہ بائلو سمجھ آتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ وقت دیکھا جا سکے کہ جو بحث کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا، جو حق میں اپنی خواہشات کا اظہار چاہتا ہے، اگلے دن بھی میں ایک، اب اسے میں کیا کہوں، عالم کہوں، مفکر کہوں، چونکہ کوئی لفظ جچتا نہیں ان الفاظ کے ساتھ۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ائمہ کی بحث ہے، وہ بھی تو ہمی طرح کے لوگ تھے، اگر انہوں نے قرآن کریم سے پڑھ کر دیکھ کر سمجھ لیا ہے اور لوگوں کے لیے تحریر کیا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج ہم بھی سمجھ سکتے ہیں اور اپنے اپنے سمجھ کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اس وقت سمجھ آئے گی اس عقل مندی کی، جو اپنے تکبر میں لی جا رہی ہے، جو اپنی خواہشات کی پیروی میں جس کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ کلام ذاتی فرماتا ہے کہ اے مخاطب، تو ان کی اس وقت حالت دیکھ جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، جب فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں اور روح کھینچ رہے ہوتے ہیں وجود کے ایک ایک تن کے ایک ایک حصے سے۔ اب ایک اور پہلو یہیں اسی حصے سے، نتائج، کہ جس راہ کا مسافر ہوگا ویسا ہی با منزل ہوگا، عمل صالح ہوگا تو اختتام اور انجام اعلی ہوگا، عمل بد ہوگا تو سکرات الموت کی میں جو تڑپ ہے، جو سختیاں ہیں، وہ کیا ہے؟ انجام بد ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں ہر شے کو اس کی اصول کے مطابق استعمال کرنے کو عقل مندی کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کھڑکی کی جگہ کسی نے دروازہ کھڑا کر دیا ہو، یا پنکھے کی جگہ اس نے لائٹ لگا دی۔ हर जगह की मुताबकत के साथ फैसला किया जाता। क्यों? समझ आती है कि हर शय का अपने मकाम पर होना सूदमंद है, फायदामंद है। अब इसका फायदा दुनियावी है, मौके पर समझ आ रहा है, हक पर बाअमल रहना इसकी न समझ आए तो फिर ईमान का दर्जा क्या है। तो जो तीसरा हिस्सा यहां से अर्ज कर रहा हूं यह है कि ये अंजाम की बात हो रही है, और जब अंजाम ऐसा बयान फरमाया जा रहा है तो फिर उन्होंने अपनी जिंदगी करा और उसका इंतखाब क्या किया है। जो ये इरशाद फरमाया जा रहा है कि ए मुखातिब, तू उस वक्त उन जालिमों की हालत देख जो सुकरातुल मौत की है, जो इंतहाई सख्ती की है, वजूद और वजूद की तकसीम पर गौर फरमाए। इस तकसीम में एक एक बॉडी सेल तक जाए, फिर एक एक बॉडी सेल की हयात को समझते हुए उस एक एक तंद एक एक सेल से रूह क्या खींचना सोचें तो समझ आएगी कि ये सर ता पा एक एक जर्रे से जान निकलेगी। कैसा मामला होगा, क्या हालात होंगे, कोई ऐसा है नहीं जिसने इस कैफियत और हाल में से गुजरना नहीं, पहुंचना नहीं। अब वो हाल और कैफियत वो किस तरह की होगी, जैसा अमल हो। जो अमल साले होगा उसके हालात भी हैं, क्यामत की कायम होने और उसकी सख्तियों में भी कुरान करीम उनकी आसानियां बयान फरमा रहा। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी ग़मारातिल मौत वल्मलाइकतु बासितु ऐदीहिम, और जब फरिश्ते हाथ बढ़ा रहे होंगे। अल्लाह करीम हमारी कमजोरियां और गुनाह माफ फरमाए, उसका करम और उसका एहसान उसने ये मुबारक महीना जिंदगी में फिर अता फरमाया, ये मुबारक दिन अता फरमाया। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारी कमजोरियां माफ फरमाए, और यहाँ इस मंजिल से हमने भी गुजरना है। अल्लाह ये गुजरना बहालत ईमान फरमाए। फिर अगले हिस्से में अगर आप देखें कि जब फरिश्ते हाथ बढ़ा रहे हैं तो ये सूरत जो हम कलामी की थोड़ी देर पहले मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान करीम जब फरमा रहा है कि ऐ मुखातिब उस वक़्त दे, तो यानी ये देखना मुमकिन है, तो वो हम कलामी भी यहाँ से समझ आती है कि इसी दुनिया में जाने से पहले, चूंकि मौत वाक़ होगी तो फिर तो आलम बदल गया, ज़ाहिर न रहा बरज़ख आ गया, खल्क न रहा बरज़ख में मुंतकिल हो गया। तो ये जो हाथ का बढ़ाना मुखातब करना यहाँ फिर कलाम की समझ आती है कि फरिश्ते साहेब मौत जिस पर मौत वाक़ हो रही है उससे कलाम कर रहे हैं। अखरजू अनफुसकुम, अल्लाह जैसे अर्ज किया कि ये कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय को फना है, कायम बिज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो जब ये जाने निकालो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने अर्ज की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला जिंदगी के पहलू पर इरशाद फरमाया और आपने फरमाया कि जब तुम्हारी जान निकल रही हो तू दुनिया को छोड़ रहा हो, अंतफारक दुनिया, तू दुनिया को छोड़ रहा हो, अलग हो रहा हो, तफरीक हो रही हो, वलिसानुक रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, तेरी जबान अल्लाह के नाम से अल्लाह के जिक्र से तर हो, اب یہ کیفیت بھی تو سکرات الموت کی آپ نے ارشاد فرمائی. اس عملی حصے کو دیکھتے ہوئے یہ ضرور سمجھنا چاہیے اور یہ ضروری ہے سمجھنا, یہ انجام ہمارے اعمال پر نہیں ہے, اس کی عطا پر ہے. ہم اپنی عبادات, اس کی ادائیگی, اس سارے کے پیچھے اخلاص, ایک ایک چیز کو تولیں تو سمجھ آ جاتی ہے. ہمارے سجدے صاف ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کتنا خشوع خضوع ہماری نماز میں ہے, معلوم نہیں کہ دو رکعتیں پڑی ہیں, تین رکعتیں پڑی ہیں, یہ بھلا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ذہنی معذوری ہی ہر جگہ ہے. کثیر اس لیے ہوتا ہے کہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے, دھیان ہمارا کسی سودے میں, کسی کلام میں, کسی بحث میں ہوتا ہے. ارضاں اللہ کے روبرو ہیں, کلام کسی مخلوق سے کر رہے ہیں, کسی ضرورت پر بحث سوچ رہے ہوتے ہیں. کثیر تعداد اس لیے سجدہ صاف کی ہمیں ادا کرنی پڑتی. تو جب ہماری عبادات کی کیفیت اور حال یہ ہے, پھر یہ سمجھ لینا کہ بخشش میری عبادات جو ہیں وہ سبب ہیں, ہے نہیں. خالص عبادت کی ادائیگی بھی بندے مومن کو اس درجے پر نہیں پہنچاتی کہ وہ بخشش کے قابل ہو, اس لیے اظہار تشکر سے نہیں نکل سکا. جو کچھ اسے عطا فرما دیا گیا ہے اس کی شکر گزاری سے نہیں نکل سکا, مزید عطا کا طالب کیسے ہو سکتا ہے اپنی عبادت کے بنا؟ تو یہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے, اس کا کرم اور اس کا احسان ہے, غفور الرحیم ہے. اسے عطا کرنا, اسے بخشنا, اسے معاف کرنا محبوب ہے, اسے پسند ہے, وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. مخلوق مخلوق رہے تو بچ جاتی ہے, مخلوق جب متکبر ہو جائے, مقابل ہو جائے, پھر ماری جاتی ہے. تو یہ کیفیت اور حال, احرجو انفسکم, جب حوالے کر رہے ہوں گے اپنی جانیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو کیا خوبصورتی عطا فرمائی, کہ یہ خوبصورتی یہ ہو کہ جب تو جا رہا ہو تو تیری زبان اللہ کے نام سے تر ہو. اب جب بات لسان کی آئے گی, زبان کی آئے گی, تو یہ سکرات الموت کے وقت کی بات ہے. دنیا وجود اور وجودی حصوں پر بات ہے, تو یہ روانگی اللہ 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 کے نام سے. تو اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ ہمیں تو خانہ خدا میں جمع ہی اللہ اللہ پر فرمایا, تو اپنے شب و روز میں اپنی اس اللہ اللہ کی محنت اور مجاہدے کو مضبوط کیجئے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیجئے. جو جو حصے تربیت کے بتائے جا رہے ہیں اور جو جو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں انہیں سمجھتے ہوئے اس پر محنت کیجیے, اور یہ محنت آپ کو اللہ کریم ہمیں زندگی عطا فرمائی تو اگلے رمضان المبارک تک سنبھالے گی. پوری محنت کرتے ہیں ہم لوگ رمضان المبارک آتے ہیں, عمومی طور پر بھی دیکھا ہے, سر ڈھانپا ہوگا, مسجد میں رش ہوگا, ہاتھ میں تسبیح ہوگی, اور ہر دوسرے تیسرے جملے میں پھر یہ بات اس حوالے سے آئے گی, عبادت کے حوالے سے. لیکن جو تماشا چاند رات کو ہم کرتے ہیں اسی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سارے لبادے کے پیچھے ہماری اپنی حال اور اپنی کیفیت کیا تھی. ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کی عبادات کا اثر اتنی طاقت رکھتا ہو کہ اللہ کریم اتنی حیات عطا فرمائے کہ اگلا رمضان بھی اگر نصیب ہے تو اس رمضان میں داخل ہونے تک ایمان کو اتنی توانائی اور اتنی طاقت میسر آئے کہ اس رمضان المبارک میں داخل ہونے تک غلط اور صحیح کی پہچان رہے, غلطی سے دوری نصیب ہو, اچھائی پر قائم رہنا نصیب ہو. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، نتیجہ آ گیا، فرمایا آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی. یہ فرشتے کلام کر رہے ہیں. بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اب یہ ظلم کیا ہے؟ کسی شے کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، اپنی جگہ پر نہ ہونا، یعنی کسی شے کا اپنی جگہ پر ہونا، عدل ہونا، اعتدال ہونا. جتنا جتنا تجاوز ہوگا اتنی اتنی زیادتی ہوگی. یہی منبر رسول جس مقصد کے لیے بنا ہے اسی کیفیت پر رکھا ہے. اسے گرا دیں پھر اس کے اوپر بیٹھ کر بات کریں تو یہ کیا صورت نظر آئے گی؟ اس کو الٹ دیں، بالکل الٹ دیں، اور کتنی خرابی نظر آئے. اسی طرح جب کسی عمل کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جاتا ہے وہ ظلم ہے. عمل خود نہیں ہٹتا، اس کے پیچھے کوئی عامل ہے، کوئی ہٹا رہا. کون ہے؟ جو مخاطب ہے. مخاطبین کون ہیں؟ صرف بات وہاں کی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کی بات ہو رہی ہے. اس عالم آب و گل میں آنے والے ہر انسان جو ہے اسے مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری مکلف مخلوق اس زمین پر بستی ہے، جنات، وہ مخاطب. اب جب مخاطبین کو اس وسعت سے دیکھو گے تو ہم اپنے اپنی ذات کو کہیں الگ کر سکیں؟ تو جب یہ بات آئے گی تو اس مخلوق میں ایک اکائی یا ایک کیفیت یا ایک حیثیت اللہ کریم نے ہم سب کو عطا فرمائی. جب ہم سب کو عطا فرمائی ہے تو پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جہان فانی جو زور بازو سے ہم چلا رہے ہیں ایسا نہیں ہے. ہم نہیں تھے تو سورج طلوع ہوتا تھا، بارش برستی تھی، دن گزرتا تھا، دن ڈھلتا تھا، شام ہوتی تھی. سورج غروب ہو تو رات ہوتی تھی، رات گہری بھی ہوتی تھی، پھر طلوع کی نشانیاں آنا شروع ہوتی تھی. یعنی جہان چل رہا تھا، اور کتنے ہی لوگ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن جہان چل رہا ہے. اسی طرح اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میری حیثیت کیا ہے؟ نہ تھا تو اس جہان میں کیا فرق تھا، ہوں تو کیا کمال لگا دوں گا، نہ رہا تو کون سی کمی آ جائے. تو اللہ کریم کے دستے قدرت سے ہے، اس کے حکم سے ہے، اس کی پسند سے ہے. تو جب ہم اس نقطے کو سمجھیں گے کہ حق سے تجاوز ظلم ہے اور تجاوز کرنے والا ظالم ہے، اور جتنا جتنا تجاوز کر رہا ہے اتنا اتنا ظلم کر رہا ہے، اتنا اتنا بڑا ظالم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اپنے معمولات میں جانے کی ضرورت ہوگی. اس عبادت، یہ جو معتکف کی کیفیت اور صورت ہے، اس سے اپنے آپ کو اس حالت میں کہ جب معمولات زندگی میں ہم اپنی پسند و ناپسند سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کر سمجھنا پھر آسان ہے. کہ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ معمولات زندگی ویسے ہوں جیسے اللہ نے پسند فرمائے ہیں، پسند و ناپسند اللہ اور اس کے حبیب کے حکم میں ڈھل جائے، تہتا آ جائے. اب اس سارے کے پیچھے ایک محرک ہے، ایک کیفیت اور ایک حال ہے، نوری ایمان. عبادات نوری ایمان کو تقویت دیتی ہیں، तवाना करती है। और जिस कदर ईमान मजबूत होता है, तवाना होता है, उस कदर मामूलात जिंदगी में जब इंसान फैसला करता है, पसंद जाती को भी रद्द कर देता है। क्यों? इसलिए कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बात ही खत्म हो। और जब हम अपनी पसंदो नापसंद को अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद के सपुर्द कर देंगे, यकीन माने ये जिंदगी सहल और आसान है। और जब हम अपनी ख्वाहिशात और अपनी पसंदो नापसंद और इसकी तामीर में लग जाएंगे, फिर एक इमारत का जो मजदूर है, जो हाथ से काम करने वाला है, जिसने गारा भी बनाना है, ईंटें भी पहुंचानी है और मंजिलों तक उठाकर अपनी पीठ पर ले जानी है, उसकी जिंदगी आसान है। और दुनिया की तामीर करता हुआ वंदे मोमिन जो है, उसकी जिंदगी फिर मुश्किल हो जाती है, हर कदम मुश्किल की तरफ ले जाता है। और बात मानने की है। अब कहने को क्या है, मानना कितने लफ्ज इसमें हर्फ आए, लेकिन ये कैफियत और हाल है। शैतान पूरी कोशिश करता है, पूरा जोर लगाता है कि मैं इनको अपने साथ जहन्नम का ईंधन बनाऊं। और हम अपने हर गलती को शैतान के जिम्मे करके फारग होते जाते हैं और समझते हैं कि हम फारग हो, मामला ऐसा तो नहीं। रमजानुल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शयातीन कैद हैं। शयातीन कैद हैं, मुआशरे में शीतनत क्यों है, हमारी सोचों में शीतनत क्यों है, हमारी गुफ्तार किरदार में शीतनत क्यों है। का मतलब हुआ कि उस दर्जे की, जिस दर्जे की हमारे उमूर में गलती है, उस दर्जे की शीतनत हमारे अंदर सराइयत कर गई। और जिन्हों इंस जब कुरान करीम बयान फरमाता है तो फिर वो सराइयत जिसको उस सराइयत में डूबना और डूब गया है जो, वो तो फिर हो ही हुआ ही फरीक गया ना। क्योंकि जिन्हों इंस के शयातीन जब कुरान करीम बयान फरमाता है तो फिर जो डूब गया इस शीतनत में तो वो तो हो ही शैतान। तो बहुत खूबसूरत मौका है अपनी जिद, अपनी गलती के जवाब इन्हें हम छोड़, किसी से बहस की नहीं जरूरत, न मुझे आप पर अपना आप साबित करने की जरूरत है और ना आप कोशिश करें कि मुझ पर या किसी पर साबित करें। अपना जायजा ले लें, अपनी सोचों को देख लें, अपने आमाल को देख लें और छोड़ दें इस बात को कि मैं दूसरों को नसीहत कर रहा हूं। एक नसीहत अपने आप को भी हम कर लें, एक गुफ्तगू हम अपने आप से भी कर लें, अपनी सोचों अपने किरदार, कौन नहीं वाकिफ। और जो जो तजावज पर साथ अपनी शहादतें अपनी ख्वाहिशात की लगाता है, कुरान करीम उसे जालिम कह रहा है। सुकरातुल मौत की कैफियत और हालत उसकी बयान की जा रही है जो अल्लाह के हुक्म के मुकाबले आता है। कौन सी गलती ऐसी नहीं है मुझे बताएं जो अल्लाह के मुकाबले नहीं लाती। गलत इब्तिदा, गलती की इब्तिदा ही गलत है ही इसलिए कि अल्लाह करीम के हुक्म के मुकाबले। फिर फरमाया जिल्लत की सजा हम नहीं सोच सकते। हम यहां इस दारुल अमल में कुरान करीम जन्नत की बयान फरमाता है, जन्नत की नेमतों का बयान फरमाता है, करम और एहसान इनामात बयान नहीं सोचे जा सकते। जितनी भी सोच दौड़ा लें अल्लाह करीम के इनामात को नहीं समझ सकते। इसी तरह जब बात ये आती है ना अजाब अल हून, तो कोई नहीं समझ सकता कि जिल्लत वाला अजाब क्या, ये जिल्लत किस दर्जे की हो। इसकी कितनी तकलीफ और कितना तड़पना होगा कोई नहीं सोच। क्यों, वजह क्या है? बेमा कुम तुम तो अजाब अलहू ने बेमा कुम तुम तकूलूना अल्लाह गैर अलहक के, कि तुम अल्लाह के जिम्मे झूठी बातें लगाते। जब हम गलती को सच कहते हैं और सच की मदद को चल रहे होते हैं कि मैं सच कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसलिए सच, तो ये तजावज है। और अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं और कैसे कैसे बदबख्त हुए हैं, पूरा पूरा जोर लगाया उन्होंने अल्लाह के अंबिया के मुकाबल खड़ा होने में। और जब वो मुकाबल खड़े हुए क्या क्या उनके अंजाम हुए, और वो हिस्से जो दुनिया नहीं देख रही वहां पर भी बात हो रही है कि कैसे अंजाम को पाएंगे। तकूलूना अल्लाह गैर अलहक वकुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। अब उसकी निशानियों से तकब्बर करते थे। अब इस सारे बहस को समेटते हुए हम अगर इस पहलू पर आए जो कुरान करीम वजह बयान फरमा रहा है कि क्या वजह थी कि उन्हें जिल्लत का अज़ाब हुआ या जिल्लत के अज़ाब में पहुंचेंगे, वो ये थी कि तुम अल्लाह के जिम्मे झूठी बातें लगाते हो जो फरमाया नहीं गया, जो इसे अल्लाह ने मुकरर फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हक इरशाद फरमाते थे तो सारे कुफार मुशरिकीन बेशुमार मखलूक थी जो मुखालफत करती थी, उसमें एक फरीक बहुत बढ़कर मुखालफत करता था यहूद का, और इनकी मरकजी आबादी मदीना मुनव्वरा और उसके मजाफात में थी। इनके आलम, इनके रहनुमा बड़े बड़े जो इनके नाम थे, उनका कयाम मदीना मुनव्वरा के कुर्ब जवार और मदीना मुनव्वरा में। तो मक्का से अहले मक्का ये कुफार वहां जाते थे, वहां से एतराजात उनसे समझते थे, कौन सी बात पर क्या एतराज करना है, कौन सा सवाल उठाना, ये हुजतें वहां से सीख कर आते थे। फिर मक्का मुकरमा में पहुंचकर वो बातें फैलाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक्दस पर एतराजात करते थे। तो एक सिलसिला जारी था। लेकिन कुरान करीम जब इरशाद फरमाता है तो सिर्फ वो एक मौका नहीं रहता, असूल बन जाता है, असूल वजा होता है, असूल ही इरशाद होता है। असूल बन जाना तो कमजोर पहलू कहना, असूल ही इरशाद होता है क्योंकि अल्लाह जल्ला शानहू का कलाम है। अब इसके पीछे एक मुहर्रक और एक कैफियत और हाल है जो इस दर्जे को पहुंचाती है। तस्तकबिरून, सबब क्या हुआ? तकब्बर। और गौर कीजिएगा, जब भी बंदा किसी बात या अमूमी को भी नहीं ना मानता, पता क्या कहता, मैं नहीं मानता। और जब ये कैफियत मैं नहीं मानता हक के मुकाबले आती है, ये कैफियत और हाल जो इस्लाम सिखाता है वही आला है, वही कामयाबी का रास्ता है, और दूसरा कोई राह ना है ना हो सकता है। तो जहां जहां मैं और आप ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता, उसे देखने की जरूरत है। अगर तो वो ना हक है तो नहीं मानता, अंजाम आला होगा। और उसमें भी लफ्ज मैं पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें भी जो कैफियत और हाल चाहिए वो ये है कि मेरा अल्लाह मुझे इससे पना दे। ये कहना कि मैं नहीं मानता, ये फिर फंसाता है, भाई मैं है ही कोई नहीं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात मुबारका के वाकयात में एक वाक्या मिलता है, और उस वाक्य में शैतान ने बहुत बड़ा वसवसा बनाने की कोशिश की, बहुत बड़ा खेल खेला, और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अज़ीम इस जवाब की इब्तिदा की। जब वो सारा खेल भस्म हो गया तो भागते शैतान ने कहा, ऐ कादर, आज तुझको इस गलती से तेरे इल्म ने बचाया। बात क्या लंबा है, वक्त छोटा है, इसलिए मैं जो नुकता है वो अर्ज कर रहा हूं। आपने इरशाद फरमाया, नहीं बदबख्त, मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया। तो जब इस पर उलमा बहस करते हैं, वो कहते हैं कि जो उसने तिलसम बना रखा था, जो घर रखा था, जिसका ड्रामा जो किया, वो इतना खतरनाक नहीं था जितना खतरनाक उस भागते शैतान का ये वार था कि आज तुझे तेरे इल्म ने बचाया। इसलिए इस मैं से जान हमें छुड़ानी है। ये कह मैं नहीं मानता, भाई बात ही नहीं है, मेरे अल्लाह ने नहीं पसंद फरमाया, मेरे अल्लाह को ये पसंद है, मेरे अल्लाह को ये नहीं पसंद, बात खत्म। इसके लिए कैफियत और हाल चाहिए। ये लोग जिन्हें अल्लाह करीम ने दुनिया में कैफियत और हाल ऐसा अता फरमाया कि साहिबुल राय हैं। साहिबुल राय कहते हैं जो हर मामले में हतमी राय दे रहा हो मौके की। सारी सारी जिंदगी मसाजिद में और इन घरों में और कोनों में बैठकर सर हलाते क्यों गुजार दी? अपनी मशाख आजाम की हयात मुबारक पढ़े ना। कुरान करीम फरमाता है वो जमात जो गुजर गई उनका मामला उनका है। जो जमात है या जो लोग हैं, इनके आमाल का मामला इनका है। हमें अल्लाह वो आमाल अता करने अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए जो सालिह रास्ता है। अल्लाह करीम मेरा और आपका हामी व नाफिसर हो, हमारी गलतियां और गुनाह खताएं माफ फरमाए, ये मुबारक साथ नसीब फरमाए, खात्मा बिल ईमान हो, रब कायनात हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। अल्लाह करीम यहाँ वो लोग पैदा फरमाए जो उसके हुक्म को पसंद करें, जो उसकी मखलूक के साथ अदल करें। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।